प्रहलाद, पिताजी को प्रहलाद जी ने किया। जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई को, इकलौते भाई को, उनको भी प्रख्या कर दिया, कौरव दाता को। और भरत जी ने क्या किया, अपनी मैया का प्रख्या कर दिया। कई कई उनसे कहने के लिए, बेटा एक बात की मां कह दे, कभी नहीं कहा, अंत तक नहीं कहा। जब रामचंद्र जी आए लंका का राज्य विजय करके, रावण को मार करके जब भी आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, राजगद्दी पर बैठ गए और 11,000 वर्ष के करीब हो गए, तो एक दिन सब चाहती हुई कतई मैया रामचंद्र जी के पास में पहुंची, बोली, बेटा मेरी एक लालसा आ गई और सब लालसा पूरी हो गई, बस एक लालसा है। मैया कहो, क्या तुम्हारी लालसा है? तुम तो मुझे मां कहते हो, लक्ष्मण भी मुझे मैया कहता है, सब तो मुझे मैया कहता है, किंतु भरत मुझे कभी मां नहीं कहा, जब से तुम बंद हो गए। मैं ललकती हूं, रोती हूं, तड़पती हूं कि एक बार मुझे मां कह दे, किंतु वो तो मां कहता ही नहीं है। अधिक से अधिक वो रानी के रूप में, रानी कैकई के रूप में वो कहता, और कुछ नहीं कहता, महारानी कैकई। मैया ने कहता, तुम यदि कह दे तो तुम्हारी बात का उल्लंघन कभी भी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, अच्छा मैं देखता हूं। भरत जी को बुलाया, अजय भैया एक बात था, मानोगे? उन्होंने कहा, विचार किया मन ही मन में, आज 11,000 वर्ष हो गए, बैठिए, 11,000 वर्ष हो गए, रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा जे मेरी बात मानोगे, मालूम होता है कि इसमें कुछ रहस्य की बात है। सोचने ये क्यों कहा भैया ने, विचार करके कहते हैं भाई से, रामचंद्र जी से, भैया आपकी सभी बातें मेरे लिए मान्य है, मैं कभी भी आपकी बात का उल्लंघन नहीं करूंगा, किंतु एक बात है, एक बात को छोड़कर। मैंने कहा जी क्या? महारानी कैकई को मां कहने के बदले, मां कहने का पिता, आप जो कुछ भी कह दे, बस यही मुझे आज्ञा मत दे। राम के भी आंखों से आंसू टपक आए, मेरे प्रति इतना अथाह अगाध इनकी भक्ति। रामचंद्र जी थे, फिर उन्होंने कैकई को और नहीं कहा। कैकई ने यद्यपि तो नहीं किया, सब लोगों का कल्याण करने के लिए ही ऐसा कहा, इसलिए रामचंद्र समाताओं से उन्हीं को अधिक स्नेह करते हैं, तो भी ऐसे ही, इसलिए तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंध भरत महतारी, तजऊ ब्रज की कांताएं जो हैं गोपियां अपने पतियों को प्रत्याग कर दी, किस लिए? इसलिए कि राम के कृष्ण के विरोध मिलने में बाधा देते हैं, इसलिए भय जग मंगलकारी, सबका मंगल हुआ। अरे गुरु को भी प्रत्यज्ञा कर दिया तो और की तो बात क्या है, शुक्राचार्य को बलि महाराज जी ने प्रत्या, इसलिए माता पिता भाई बंधु हमारे आदरणीय हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसमें सहायता करते हैं, हमारे आदरणीय, उनके बात का खबरदार कभी उल्लंघन मत करो। किंतु जहां पर विरोध होता है भगवत भक्ति का, खूब दीनता से उन्हें समझाओ और उनका कभी भी निरादर मत करो, यथायोग्य सम्मान देते हुए चलो, नहीं तो बड़ा भारी अमंगल हो जाएगा। किंतु इस विषय में सुलहनामा में, इस विषय में उनको बड़े नम्र शब्दों में कह दो कि हम तो भगवत भजन करेंगे, इसमें विरोध मत। इस तरह से तुलसीदास जी ने जब लिखा, बड़ी प्रसन्न हुई और वैसे ही किया। घर छोड़कर के चली आई वृंदावन, वृंदावन से द्वारका गई और द्वारका में जाकर के उनके शिव विग्रह में समा गई। तो ऐसी कृष्ण की कथाएं हैं, कल बतलाया गया कि ये कथाएं, इसीलिए यदुवंश में कृष्णचंद्र जी स्वयं आए दया से, हमारे लिए इतना प्यार, बस झट उनके कुल में आए और ये सब दिलाएंगे। तीनों प्रकार के लोग भगवान की इन कथाओं का आदर करें। जो संसार से विमुक्त हैं, जो साधक हैं, जो विषयी हैं, जो मुमुक्ष हैं, जिनको मुक्ति की भी इच्छा है, सब प्रकार के लोग भगवान की इन कथाओं का आदर करेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है दुर्भागा आत्मघाती जो भगवान की इन लीला कथाओं का श्रवण नहीं करेगा? ये सब बातें भी कल विस्तृत रूप में बतलाई गई है, विशेष विलंब हो जाएगा, अंत में फिर मैं कुछ कहूंगा। अभी ये कथा आरंभ हो रही है दशम स्कंद की। हम लोग जन्म और जन्म के बाद में नंद बाबा जी का, नंद बाबा का वो कृष्ण का नंदोत्सव इत्यादि और कृष्ण का जन्म संस्कार इत्यादि तक हम लोग कथा कहेंगे। इसके बाद में कृष्ण का अभिषेक कराएंगे, उनके संबंध में कुछ और बातें होंगी और प्रत्येक शाम को हम लोग दर्शन कथा होती है दर्शन। अभी आप लोग कथा हम लोग की कथा चल रही थी, इसमें ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के शंकर को लेकर फिर समुद्र के तट पर गए हैं और वहां पर पुरुष सूक्त से प्रभु की स्तुति करने लगे और वहां पर गिरम समाधौ गगने समीरता आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे अमर देवताओं, हमारी वाणी सुनो। हमारे प्रभु ने तुम्हारी इस प्रार्थना को सुन लिया है, ये हमारे प्रभु ने कहा। बात सहज नहीं है यहां। ब्रह्मा जी गर्भदशाई तक जा सकते हैं, उनके वो प्रभु हैं। यहां पर फिर समुद्र के तट पर गए और फिर समुद्र के भी फिर फिरोदशाई विष्णु के भी अंशी हैं। गर्भदशाई ये ब्रह्मा जी के उपास्य हैं, उन्हीं के नाभि कमल से निकले हैं ये, इसलिए ब्रह्मा जी गर्भदशाई फिरोदशाई के माध्यम से स्तव स्तुति की, जो हमारे प्रभु से इसकी सूचना दे दें। गर्भदशाई कह रहे हैं क्षीरोदशाई कि हमारे प्रभु हैं। कौन? गर्भदशाई। आप लोगों की प्रार्थना करने से पहले ही उन्होंने जान लिया है तुम जो जिस बात के लिए आए हो। पृथ्वी के आने की कोई जरूरत नहीं थी, इनमें धैर्य नहीं था, इसलिए आई। क्योंकि सच्ची बात तो यह है, प्रभु उसके पहले ही जानते हैं और उन्हीं का विधान से ये सब कुछ हो रहा है, सभी कुछ वो जानने वाले हैं, सर्वांतरयामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। इसलिए गर्भदशाई जी ने आदेश दिया है क्षीरोदशाई को, जो तुम जाकर के देवताओं से कह दो जो गर्भदशाई के जो प्रभु हैं। कौन प्रभु? कर्णाब्दशाई के भी जो मूल अंशी, नारायण के जो भी मूल अंशी, स्वयं कृष्ण चंद्र जो हैं, सब अवतारों के अवतारी, वो जान ली हैं और उन्होंने आदेश दिया है गर्भदशाई को जो तुम क्षीरोदशाई को कहो और क्षीरोदशाई आप लोगों को सूचित। ये सबके प्रभु हैं, कृष्ण कृष्ण ने जाना है, इसलिए उन्होंने आदेश दिया है और उनके आदेश को हम तुम लोगों से सुना रहे हैं। ये सब चीजें टीकाओं में है, सब लोगों के समझने लायक नहीं है। इसलिए कृष्ण मूल है यहां और वही आदेश दे रहे हैं गर्भोदशाई को और वो क्षीरोदशाई के द्वारा ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को कर कहा क्या आदेश दिया, तुम लोग लौट जाओ, प्रभु जान रहे हैं, मैं स्वयं सबके इस जो है सर्व कारण कारण सबके आदि अपने अनादि वो मैं खुद ही आ रहा हूं। मैं अंश भागे न, अंश भाग का तात्पर्य यह कि अंश के द्वारा देवकी वसुदेव के यहां पर मैं अवतरित हूंगा और मैं जो स्वयं हूं अहम, अहम कौन, वो जो कह रहे हैं मूल में कृष्णचंद्र, मैं आऊंगा उनके जसोदा के पुत्र के रूप में नंद बाबा के घर में नंदालय में मैं स्वयं आऊंगा और अंश भागे ना मैं वहां से। दूसरी बात, अंश भागे का एक और भी तात्पर्य होता है, अंश भागे ना मैं अपने जो अंश भाग बलदेव प्रभु हैं उनके साथ में मैं आ रहा हूं, मेरा मथुरा में आविर्भाव होगा और जन्म लीला होगी गोकुल में, आविर्भाव में और जन्म लीला में बहुत अंतर है, बहुत बहुत अंतर है। भगवान का आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है, और स्वयं भगवान जो कृष्ण है, नंदनंदन जो है, राधाकांत जो है, उनका आविर्भाव नहीं, उनकी जन्म लीला होती है। इसलिए उन्होंने आगे से सूचित किया और ये सब चीजें देवी को बतलाया अपनी अनुजा को, विष्णुर अनुजा। विष्णुर अनुजा कौन है यदि रख लिया जाए कि कृष्ण का जन्म मथुरा में वसुदेव देवकी के द्वारा हुआ, तो वहां पर कौन लड़की पैदा हुई, कोई भी लड़की पैदा नहीं। इसलिए वहां पर यदि वहां पर कोई लड़की का जन्म नहीं है इसलिए उनकी कोई अनुजा नहीं है। अनुजा माने अनुमाने पीछे, जब मैंने जन्म लिया अतः तो कृष्ण के पीछे जो जन्म लिया, अब चलिए गोकुल में, मथुरा में तो हुआ नहीं, मथुरा में आविर्भाव हुआ वो पीछे बतलाएंगे, अभी तो नहीं बतला रहे, पीछे बतलाएंगे। वहां पर आविर्भाव हुआ माने 16 वर्ष के लड़के जैसे नवजुवक होकर के केश अलंकार इत्यादि के साथ में प्रकट हो गए, जन्म लीला नहीं हुई। इसलिए देवी को ये कह रहे हैं कि तुम पहले जाना और जाकर के मथुरा में देवकी के गर्भ से जो मैं अंशभाग से हूं, अंशभाग से दो रूप, एक कृष्ण का अंशभाग और एक बलदेव का अंशभाग, दोनों अंशभाग पूर्ण रूप में जो अवतारी बलदेव हैं वो वहां पर आविर्भूत हुए अपने अंश से, कहां देवकी के गर्भ में, और उनको जोगमाया को कृष्ण आदेश दे रहे हैं जे तुम जाना मथुरा में और देवकी के गर्भ में बलदेव जी का अंश वहां पर है, उसको ले आना और रोहिणी के गर्भ में अब उसके जो पूर्ण भाग है उस बलदेव में मिला। लोग समझ नहीं सकेंगे, ये सब उसी शब्दों में ही इसका अर्थ छिपा है, किंतु इस तत्व को जो जानने वाले हैं वो समझेंगे, सब नहीं समझ सकेंगे। इसलिए देवी को इस प्रकार से आदेश दिया। अंश भागेन का अर्थ ये समझिए, कुछ लोग कहते हैं कि बलदेव का जन्म कृष्ण से एक वर्ष कितना माह पहले हुआ, किंतु श्रीमद्भागवत के लीला चरित्र के वर्णन से ऐसा मालूम होता है कि बलदेव जी कृष्ण से केवल कितने दिन पहले हुए, पूर्णिमा को बलदेव होते हैं और अष्टमी को कृष्णचंद्र होते हैं। तो यदि कृष्ण को पहले अष्टमी को ले लीजिए और उसके बाद में पूर्णिमा को बलदेव होते हैं तो कितने दिन का अंतर हो रहता है, केवल आठ दिन का अंतर होता है। आठ दिन तो होने से तो बलदेव प्रभु छोटे हो जाते हैं, इसलिए उनको उस वर्ष के पहले वाले में रखिए, तो फिर हो जाएगा एक वर्ष कितना दिन। किंतु यदि ऐसा मान लिया जाए तो दोनों का साथ साथ में घुटनों पर चलना, एक ही साथ में दोनों का नामकरण, यह सबसे बड़ी चीज है। यह संभव पर नहीं हो सकता था, दोनों का नामकरण एक साथ कैसे होगा? क्या एक वर्ष और कितना महीना बलदेव प्रभु जी के लिए चुपचाप रहेंगे, कहां रहेंगे? इसलिए ऐसी संभावना नहीं। इसलिए शास्त्रों के विचारों से जीव गोस्वामी ने इस चीज को आविष्कार करके बतलाया कि नहीं, ऐसा नहीं, केवल थोड़े दिन कहीं पहले कृष्ण पूर्णिमा को हुए बलदेव प्रभु जी और उसके बाद अष्टमी में ये होते हैं, इसलिए थोड़े दिन का केवल अंतर होता है। ऐसी सब बातें इसके अंदर में छिपी हुई हैं। कृष्ण चंद्र जी का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, वो गोकुल में हुआ। किस प्रकार से हुआ आगे हम लोग बतलाएंगे। अभी कथा जहां से आरंभ हो रही थी वहीं से फिर आरंभ हो रही है, आप लोग सब स्त्रियां सब गोपियां सब जुटी हुई। पहले ये थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, नंद कयो आनंद भयो जय कन्हैया लाल, और इसके बाद में और उनको कब बुलाएंगे यहाँ है उनका अभिषेक। कृष्ण की बाल्य लीलाओं का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत में के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण चंद्र जी मथुरा में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। कुछ लोग कहते हैं कि उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से, इस विषय में हम लोग थोड़ा सा विचार करें। बड़ी भारी सभा जुटी और उस सभा में मथुरा के लोग, मथुरा के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग और सब जनता एक तरफ में बैठी। उसके पास ही में द्वारका आकर बैठ गई, पासी में इंद्रप्रस्थ और वहां के भीष्म पितामह अर्जुन पांडव लोग भी वहां पर बैठ गए। बड़ी सुंदर खासी सभा वहां पर भी थी। दूसरी तरफ में ब्रज के लोग थे, ब्रह्मा को भी, व्यास जी को भी, सुखदेव गोस्वामी को भी उसमें आवाहन किया गया। वो लोग ठीक दोनों के बीच में बैठे। अब प्रश्न हुआ कि लोग मीमांसा करें कि कृष्ण का कहां जन्म हुआ। मथुरा की तरफ से अक्रूर और उद्धव जी खड़े होकर के उन्होंने कहा कृष्ण का जन्म जरूर मथुरा में ही हुआ। उनको वसुदेव जी ले गए, गोकुल में रखा है और वहां पर कन्या थी उसको ले आए। ये तो सर्वविदित है, सुखदेव गोस्वामी ने भी ऐसा ही कहा है, अक्रूर ने भी इसका अनुमोदन किया है। और उन्होंने कहा, वो वैवृद्ध है, उन्होंने कहा कि हां निश्चित नंद के ही, वसुदेव जी के ही पुत्र कृष्ण है, मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं। इसी प्रकार से भीष्म पितामह ने, कुंती ने, पांडवों ने भी इस पक्ष का समर्थन किया मथुरा वाले लोगों का, जो कृष्ण वसुदेव जी के और देवी जी के लड़के। ब्रज की लता पत्ता तक भी ब्रजवासियों की तो बात क्या, गोपियों की तो बात ही क्या, वहां का कोई भी धूलि कण इस विषय को स्वीकार नहीं कर सका जो कृष्ण मथुरा में जन्म। हम लोगों ने वहां पर देखा, हम लोगों के सामने नाड़ी छेद हुआ, जात संस्कार हुए, कृष्ण वहीं पर खेले धूले, और आप लोग कह रहे हैं जो मथुरा में इनका जन्म हुआ, वाद विवाद बढ़ गया। ब्रह्मा जी वहां पर थे, ब्रह्मा जी से पूछा गया, सुखदेव गोस्वामी जी भी वहां पर थे उनसे पूछा गया, नारद जी भी वहां आ गए, व्यास भी आ गए। सुखदेव गोस्वामी से मथुरा वालों ने पूछा, आप ठीक ठीक उत्तर दीजिए, बहाना काल मत बनाइए। कभी आप कहते हैं मथुरा में जन्म लिया और वो ले गए वहां और दे आए और लड़की को बदल ले आए, और कभी आप कहते हैं नहीं ये नंद के पुत्र हैं, यशोदा जी के पुत्र हैं, आप ठीक ठीक बातें बतलाते क्यों नहीं है। उन्होंने कहा हमने तो भाई ठीक ठीक कहा, मैं अब स्पष्ट बतलाता हूं, मैंने परीक्षित महाराज को खुश करने के लिए केवल ऐसा कहा था कि मथुरा में उन्होंने जन्म, मथुरा में आदिभूत हुए किंतु अंश से पूर्ण रूप से वहां नहीं हुए। मैंने तो ये श्रीमद् भागवत में एक जगह नहीं पचासों जगह मैंने ही ऐसा कहा है, तो कहां कहा आपने, मैंने ये नहीं कहा जो क्या
नंदस्तु आत्मजोत
नंदस्तु
आत्मजोत
आत्मजोत उत्पन्न जातरला महामन, मैंने कहा नहीं। आत्मज किसको कहते हैं, आत्मज मैंने आत्मो वही जायते पुत्र, जो आत्मा से उत्पन्न होता है पिता के द्वारा, माता पिता के और से माता के गर्भ में जो पैदा होता है वो आत्मज कहलाता है। इसलिए मैंने स्पष्ट कहा है कि ये नंद बाबा के पुत्र हैं। अरे मैंने तो डंके की चोट में बतलाया, कात्यायनी की पूजा में गोपियों ने उनको कैसे क्या कहा, वो तो मेरा कहना ही था ना, नंद गोप सुतम देवी सुरुते पथिंग में सुरुते नवा। मैंने तो एक गणेश अब इसे बतलाओ तो नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप का पुत्र मैंने बतलाया, और भी मैंने बतलाया देवी और वसुदेव के संबंध में, अंत में दशम स्कंद के अंत में उन्होंने बतलाया क्या वो ये मनु ये विवाद मात्र है। जयती जननी देवकी जन्म बादो देवकी जन्म बादो, देवकी के पुत्र हैं ये विवाद केवल मात्र है, यथापता तत्वता नहीं, वो तो यशोदा के ही पुत्र, हमने यहां पर भी बतलाया। और मैं इतने में ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा से पूछा जाए कि आपका क्या विचार है, आप जरा स्पष्ट करके निरपेक्ष होकर के बतलाइए, तो मैंने भी तो बतला दिया, तो आपने क्या बतलाया। उन्होंने कहा पशुपांगजाय नौमिध्यते अप्र बपुषे तरिदम्बराय गुंजावतंस पर पत्थल सन्मुखाय लसन मुखाय वन्नस्त्रजे कवल वेत्र दिशानुदेन लक्ष्मस्ये मृदुपदे पशुपांगजाय, पशु को पशु का जो पालन करने वाले नंद बाबा इनसे उत्पन्न हुए, ये अंग से उत्पन्न स्पष्ट रूप में अंग से उत्पन्न हुए, इसलिए ये तो नंद बाबा के ही पुत्र हैं। बस जय जयकार होगा, बोलो नंद बाबा के पुत्र नंद नंदन की। इस तरह से वहां पर ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया, व्यास जी ने भी बतलाया, दोनों एक ही तत्व है, तत्वतः नंदनंदन और यशोदा वसुदेव नंदन और नंदनंदन में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। भावना और भाव कुछ अंतर है और रस की दृष्टि से दोनों में कुछ वैशिष्ट मात्र है। वही आंशिक रूप में वसुदेव के पुत्र हैं और वही परिपूर्ण रूप में वहां पर आए, दोनों एक ही साथ में कृष्ण यहां भी और वहां दोनों जगह एक ही साथ में उत्पन्न हुए। यशोदा के गर्भ से एक कन्या, एक पुत्र और एक कन्या कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, जन्म दिया और देवती के गर्भ से वो प्रकट हुए। कहते हैं कि जिस समय में उन्होंने कहा कि तुम छोटे से शिशु बन जाओ, वसुदेव जी ने साथ ही साथ वो कृष्ण जो थे वहां नंद बाबा के घर में जो थे, यशोदा के घर से जो पैदा हुए थे, झट आकर के इनको अपने में मिला लिया और द्विज के रूप में वहां श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गए। उसी को वहां रखाए और अगल बगल करके दे आए। इसी तरह से जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए तो वहां पर ब्रह्म सरोवर पर जमुना के पास में, भाप्रव के पास में, ब्रह्मांड अपूर्व भाग पर वो वहीं पर रह गए। कृष्ण बलदेव और रोहिणी के पुत्र और नंदनंदन रह गए और यहां से मथुरा वाले कृष्ण के वसुदेव के घर में चले। साधारण आदमी इस तत्व को नहीं समझते, समझेगी भी नहीं कि ये तत्व वैष्णव लोग ये सब कुछ कुछ समझते। दूसरी बात एक और, भजन राज्य में केवल भगवत कृपा से काम नहीं चलता अथवा अपने साधन से काम नहीं चलता, अपने भजन की का परिश्रम भी होना चाहिए, साथ साथ में भगवान की कृपा होनी चाहिए। रामन दक्षिण प्रदेश के एक आचार्य हैं, उन्होंने उनके दो प्रकार के शिष्य हैं, एक बरंगलई और एक तेलंगलई कहलाते हैं, एक मरकट न्याय और दूसरा मार्ग्याज न्याय कहलाता है। मरकट माने होता है बंदर, बंदर अपने बच्चों को छूता नहीं आदि, यदि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग करना हुआ, छलांग देना हुआ, तो वो चुपचाप गिरफ बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है और उसका बच्चा उछल कर और उसकी गोदी में या पीठ पर अपने पैरों से हाथों से खुद पकड़ लेता है और तब वो छलांग लगाता है, लगाती है बंदरी। यदि उधर में चली गई बच्चे के साथ में ठीक है और यदि बीच में ही बंदर का बच्चा यदि गिर गया, फिर जन्म भर नहीं छुएगी उसको, वो चाहे बिलबिलाए मर जाए तो भी नहीं छुए। इसको कहते हैं मरकट न्याय। मरकट न्याय माने मैं अपने परिश्रम से साधन से भगवान को पालूंगा। दूसरा है मार्ग्याज न्याय, बिल्ली के स्थान, बिल्ली का बच्चा अपने आप में जब छोटा सा रहता तो मेव करता रहता या करती रहती है उसकी बच्ची, और उसको जहां कहीं जाना होगा मां अपने मुख से पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, वो कुछ भी तनिक भी प्रयत्न नहीं करेगा चलने के लिए फिरने के लिए, पकड़ करके यहां से वहां वो मेव मेव करती रहेगी, ले जाकर के रख देगी, फिर कहीं ले जाना होगा उसको पकड़ करके ले आएगी, अपना तनिक भी प्रयास नहीं करती। तो कुछ लोग ये कहते हैं हमारे प्रयास से क्या होगा, जब भगवान की कृपा होगी हम हमको प्राप्त करा लेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, जब इतना सब कुछ प्रभु ही कर रहे, बिना प्रभु की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं डोलना है, नहीं डोलता, तो हमको प्रयत्न करने की क्या जरूरत है, जब उनकी कृपा होगी वो मिल जाएंगे, और नहीं तो उनकी इच्छा नहीं होता, हम हजार प्रयत्न करेंगे वो कभी मिल नहीं सकते, इसलिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। ई ड्रिंक कैन बी मेरी खाओ की वो मौत करो, जब उनकी इच्छा होगी बस ले लेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी से यह प्रश्न पूछा गया क्या करना चाहिए, हम लोग केवल तो साधन भजन करना है या भगवान की कृपा के लिए हम लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे। जब जब जन्म जन्मांतरों में प्रभु की इच्छा होगी वो हमको मिल जाएंगे, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो यशोदा मैया कृष्ण को बांधना चाह रहे, नन्ना मुन्हा का छोटा सा नन्ता बच्चा कृष्ण है। यशोदा मैया सखियों को बोली रस्सी अपने घरों से लाओ, पहले अपने केश बांधने के जो रेशम की डोरी होती है उसको खोल करके कृष्ण को बांधना चाहे। कृष्ण कहे मैया मैयारी मुझे मत पा। मैयारी रोने लगे, आंख से आंख धारा बहने लगे। कृष्ण ने कृष्ण का इस प्रकार से रोता हुआ देखकर कृष्ण को यशोदा मैया को भी कुछ दया है। अच्छा लठिया मैं फेंक देती हूं किंतु तुम्हें ऐसे नहीं करूंगी, तुमको छोड़ूंगी नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कि कुछ देर पहले ही अभी बतलाया था कृष्ण ने उलाहना दिया मैया को, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं हो गया श्यामला नंद बाबा गोरे यशोदा जी, बच्चों ने उसको चिढ़ाया था। कृष्ण रोते रोते मैया के पास में आए, गोदी में नहीं आ रहे। बहुत प्रयत्न करने के बाद में तब उन्होंने बतलाया कि मैं तेरा बेटा नहीं, तो मैं तेरी गोद में अब क्या आऊंगा, और मैं कहीं चला जाऊंगा वन जंगल में या जमुना में जहां आत्म समाधि ले लूंगा, और मैं घर में नहीं आऊंगा। तो यशोदा मैया डर रही है कि बड़ा उद्भी लड़का है और कहीं यदि कुछ कर दिया तो ये भाग जाएगा नहीं, अभी चित्त चंचल है, इसको बांध करके घर में रखो, इसके बाद में मैं अपने काम से निवृत्त हो लूंगी, इसको स्तन दूंगी और इसके बाद में फिर जब ये शांत हो जाएगा तो मैं फिर इसको लेकर के अपने पास में बंधन खोल करके गोदी में शांत करूं। इसलिए सोचा कि इसे बांध करके रखू, इसलिए बांधना चाहा, किंतु वो अवश्य दो अंगुल पड़ रही है। फिर मंगाया एक रस्सी, फिर जोड़ने लगे, उनके घर की सारी रस्सियां समाप्त हो गई, किंतु प्रत्येक बार दो ही अंगुल, तीन अंगुल, चार अंगुल या एक अंगुल, आधा अंगुल नहीं, प्रत्येक बार दो अंगुल पड़ रहे। बड़े आश्चर्य की बात, गोपियां हंसने लगी, बोलिए सखी क्यों इसको बांधने लगे, ये तेरे बंधन में नहीं आया था, ब्रह्मा ने इसके लाश में बंधन नहीं रखा, ब्रह्मा जी नहीं, तो तू इसे क्या बांधी, तुम सवेरे से शाम तक भी नहीं बांध सकेगी, अब तो 10-11 बज गए हैं, अब इस बच्चे को छोड़। उन्होंने कहा हमारे कोख से निकला है, मैं इसे नहीं बांध सकती, आज से शाम तक क्या जीवन भर बांधते रह जाऊंगी, जो दिन जो खाना पीना नहीं करूंगी, खाऊंगी न पीऊंगी न कुछ करूंगी, मैं इसे बांध करके ही छोड़ूंगी। जीत पकड़ लिया, अच्छा तो ठीक है, बस अपने अपने घरों से भी रस्सिया लाए, अच्छा देखें तो जरा बांध करो। यशोदा जी बांधे दो अंगुल पर, ये दो अंगुल क्या है, यशोदा जी समझ लीजिए मैं बांध लूंगी, नहीं बांध सकता, क्यों, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उनकी ऐश्वर्यमयी योग माया शक्ति है, अभदम भदम पटियसी। कृष्ण ने सोचा आज मैया हमें बांध देगी, बच्चे खेलने के लिए तैयार है, मैं उनके साथ में खेल नहीं सकूंगा, आज हमारा प्लान कुछ था कि कौन गोपी के घर में कुछ चोरी करूंगा, आज वो नहीं हो सकेगा, गैया डकर रही है हमारे लिए, गैया बिना हमारे दर्शन के दूध नहीं देती, तो वो तो दूध नहीं देंगी, हमारी और लीलाएं नहीं होंगी, इसलिए मैया हमें न बांधती तो अच्छा था। सत्य संकल्प है अवधन कर पटेशी शक्ति योग माया ने किसी को समझने नहीं दिया, प्रत्यक्ष रूप में नहीं आई, रस्सी बंध रही है, जुड़ रही है, जोड़ते 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 मीलो लंबी हो रही है, किंतु ऐसे आश्चर्य की बात हुई कि वो बस दो अंगुल कम हो गए। कृष्ण का कृष्ण की कमर छोटी सी, करधनी सोने का बंधा हुआ है, उसमें नूपुर जैसे झुंझुन करने वाले इसमें सब लगे हुए, वो करधनी बढ़ नहीं रही, ये तब तो टूट जाती कमर बन जाती तो वो तो जैसे कि तैसी है, किंतु रस्सी इतनी बढ़ करके भी और बांध नहीं पा रही। एक है क्या, कृष्ण नहीं चाह रहे ये बंध, और यशोदा जी बांधने की चेष्टा कर रही है, इसलिए वो बंध नहीं है। जिस समय में कृष्ण इच्छा करेंगे, कृपया थी तो संबंधन ही उसमें लिखा, कृष्ण कृपा करके बंध गए। कैसे बंध गए, देखा कि यशोदा जी के मुख पर श्वेत के बिंदु टमकने, मोतियां झड़ने झड़ रही हैं पसीने, और कभी उनका मुख विवर्ण हो गया। यशोदा जी कहती हैं, मेरे गृह के ठाकुर नारायण जी सालग्राम आप प्रसन्न हुई है, मैं अपने बच्चे को बांध नहीं सकती, मैं ब्रज में क्या मुख दिखाऊंगी, आप कृपा करें इसको मैं आज बांध उनके सर ना रखूं। वो सालग्राम है कौन, वही को है ना, मुख से पसीने के बूंदे आ रहे हैं, परिश्रम से एकदम क्लांत हो गई, मुख विवर्ण हो गया, लाल हो गया, आंसू भी छलकने लगे आंखों में, एक बच्चे को मैं नहीं बांध पा रही, बस प्रभु जी के शरणागत हो, प्रभु मैं आपके शरणागत हूं, मुझको लज्जा का मुख न दिखाना पड़े, इसलिए मैं इसको बांध दू। बस कृष्ण ने देखा जो मैया को बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए कृपया स्वस्थ बंधन है, कृपा करके स्वयं बंधन में आ गए। वो जो सिर बांधने में बांधने वाली, केश को बांधने वाली जो रेशम की जोड़ी थी, बस वही दो हाथ थी, बस उसी से उन्होंने उसको बांध दिया। यहां पर यही भाव है, जब भक्तों का कष्ट होता है भगवान के भजन करने में, जैसे प्रहलाद महाराज, उसके पिता ने उसको कितना कष्ट दिया है, भगवान एकदम प्रभावित हो गए, बोले जी बेटा मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, तुम इसके लिए कुछ बर मांगो, जब तक ऐसा नहीं होगा भाई भगवान को तो नहीं देखा जा सकता, उनका दर्शन नहीं होगा। इसलिए एक जगह बतलाए हैं, कोई एक महिला थी, वृद्ध थी, कोई देवल ऋषि थे, वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा सरोवर के तट पर हाथ में ऐसी मुद्रा है, जोगी जैसी है, उनको देख करके वहां पर ठहर गए, अजी कौन है ये भी यमुना के किनारे। उन्होंने उसके लिए प्रतीक्षा की कोई दूरी के बाद में, उन्होंने आंख खोल दिया, देवी आप कौन हैं, तो मैं ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या ब्रह्म माने श्रुतियों के मंत्र, तो आप यहां पर क्या कर रही हैं, तो मैं आराधना कर रही हूं, किसके लिए आराधना कर रही हैं, गोपियों के भाव के लिए, गोपियों के भाव को प्राप्त करके मैं कृष्ण की कुछ सेवा कर रही हूं, इतने दिनों से तपस्या के कर रही आराधना, तो हमारे ब्रह्मा जी चार बार बदल गए हैं, चार बार बदल गए हैं, अब ये पांचवे आ रहे हैं, इतना दिन हमारी आराधना, गोपी भाव इतना सहज नहीं, कृष्ण का दर्शन इतना खूब सहज नहीं। अभी आप लोगों ने सुना द्रोण और पशु, द्रोण और धरा, और कश्यप और अदिति ने कितने हजार 60,000 ना 65,000 वर्ष तपस्या किए, तो उनको थोड़ा सा दर्शन दिया। हम लोग चाहते हैं चट रोटी, मैंने जैसे ही रोटी बनाया और पट उसको खा लिया, इतना सजनी रसगुल्ला आया कलकत्ते के नागसेन का, बहुत ही सुंदर, उसको लिया मुख में डाल दिया। भगवान का भजन करना इतना सहज नहीं है, एक साधारण मीरा को भी देख लीजिए कितना कष्ट हुआ, और हम थोड़े में ही बिल पिला जाते हैं, इसलिए भगवान का साथ इतना नहीं है। जब वो देखेंगे ये कठोर परिश्रम हमारे लिए कर रहा है, संसार की समस्त विपत्तियों को झेल रहा है हमारे लिए, तब अपने को प्रकट करेंगे। इसलिए दोनों मिलकर के होना चाहिए। महाप्रभु जी ने कहा एक व्यक्ति कुआं में डूब गया, गिर गया, लोगों को पता चला कि भाई वो गिर गया, लोग आए भाई इसको निकालना चाहिए, उन्होंने कहा रस्सी फेंक दी उसमें, भाई तुम इस रस्सी को पकड़ लो, किंतु वो पकड़ता नहीं है, ऊपर से तो फेंक रहा है रस्सी किंतु वो पकड़ता नहीं है, तो वो कैसे निकलेगा, पकड़ना तो पड़ेगा ना। उसी प्रकार से भगवान की कृपा सब समय है, उसको पकड़ना चाहिए ना, उसमें कुछ परिश्रम साधन भजन का होना चाहिए। इसलिए साधन भजन भी करो और भगवान की प्रार्थना करो, जिसे तू अपनी कृपा की रज्जु भी हमारे लिए दे दे, तब भगवान को पाया जाएगा। ये दामोदर लीला में यही एक विशेषता है, और भी बहुत सी विशेषताएं हैं, समय अनुसार में हम लोग उसका वर्णन करेंगे। कल यदि समय होगा तो थोड़ा सा जुमला उनके संबंध में व्यापक बतलाऊंगा। आज यही तक कृष्ण का जन्म हो गया ना, कृष्ण का जन्म हो गया, अश्विनी तिथि को। अच्छे राधा जी उनको छोड़कर के रह सकती हूं, नारद जी विचार कर रहे हैं, मैं नहीं विचार कर रहा, नारद जी विचार कर रहे हैं, रसमय ब्रह्म स्वयं कृष्णचंद्र जी प्रकट हुए हैं, उनको छोड़कर के कोई एक सेकंड रह नहीं सकती वो, और न यही रह सकते हैं। तो यदि ये प्रकटित हुए हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने भी जन्म लिया होगा। अब वो सूची जी कहां हैं जरा खोज लगाओ, करते 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 खोजते खोजते रावल में पहुंचे। रावल कहां, नंद बाबा कृष्ण का जन्म नंदगांव में, और इनका जन्म राधा जी का जन्म बरसाने में नहीं हुआ था। जैसे कृष्ण अपने सब लोगों को लेकर के नंद बाबा आ गए थे नंदगांव में, उनके परम मित्र भी बरसाने को छोड़ करके वो रावल में आए गए थे। रावल उनकी ससुराल है, कृतिका जी की माता पिता जी का वो घर है, तो वहां पर आ गए थे। अब ने खोलते खोलते गोकुल से कृष्ण का दर्शन किया, और श्रीमती जी का भी किशोरी जी का भी दर्शन करने के लिए वहां से खोजने लगे। खोलते खोलते रावल में आए, बरसाने में वृषभानंद महाराज के पास में पहुंचे, इधर उधर पता लगा उनके घर में कोई संतान हुई है, वो उनके यहां गए, पूछा कि आपको कोई संतान हुई, उन्होंने बताया जहां हमको एक बालक हुआ है, तो मैं बालक का दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने श्रीदाम जी को लाया, श्रीदाम जी उनके पुत्र हैं। कितने दिन का ये बालक हुआ, तो ये करीब करीब डेढ़ दो वर्ष का हो गया है। अरे डेढ़ वर्ष का दो वर्ष का हो गया, अभी हाल में कभी दो चार दिन पहले कोई लड़की या लड़का कोई पैदा हुआ, तो हाँ एक कन्या हमको पैदा हुआ, तो वो कहां है जरा देखू तो। तो वो अच्छा तो ठीक है ठहर आपको मैं बेटा हूं, घर में गए और व्यवस्था करके फिर उनको ले गए घर में। तो वहां पर जाकर के देखा छोटी सी बड़ी सुंदरी एक लड़की वहां पर पल्ले में झूल रही है, किलकारी मार रही है, पैर के अंगूठे को अपने मुख में दे रखी, कभी देती है छिछोती है, कभी पैरों को ऐसे कर रही है, बड़ी अद्भुत सुंदर। नारद जी ने कहा उनके पिताजी से, मैं तो जानते हैं जो मैं ज्योतिष जानता हूं, तो मैं ये कैसी लड़की हुई आपको बतलाऊंगा, इसका हाथ भी देखूंगा, आप चावल ले आइए, हल्दी ले आइए, दूध की घाट ले आइए, और ये जमुना जल ले आइए, मैं जरा आचमन करके तब ये सब बतलाऊंगा। मैंने बहाना करके वहां से तड़का दिया, वो जब लाने के लिए गए तो 10-20 मिनट की देरी हुई और इतने में इन्होंने स्पाउस ड्यूटी आरंभ कर स्पाउस ड्यूटी सुन करके ललिता जी पहले प्रकट हो गई, उनकी सब सखियां प्रकट हुई, किशोरी जी भी प्रकट हो गई। किशोरी जी तो पहले छोटी बालिका के रूप में थी और उनकी प्रार्थना सुन करके और झट किशोरी रूप में प्रकट हो गई। ललिता जी ने कहा, अरे तू चुपचाप क्यों हो गया, आंखें बंद क्यों कर दिया, जल्दी से आंख खोल करके देखो और प्रार्थना करो, नहीं तो अभी ये क्षण मात्र में चली जाएंगे, इतना काटे काटे ही वो बस अंत ध्यान हो गए। हाथ संभलते रह गए पछताते हुए। फिर पीछे से उन्होंने नागकुंड में गोवर्धन के पास में उन्होंने लाखों वर्ष तपस्या की। सुनते हैं कि आज भी कर रहे हैं किशोरी जी का दर्शन करने के लिए। जब ब्रह्मरु सुबन आरोपिष्टमु कई रालक्षित नशा का पुरुष तत्व सत्यापसी कर्ण चूर्णमनंत शक्ति तंगराजिता चरण रेणु अनुस्परा। ब्रह्मा भीष्म शंख और जितने लोग हैं कोटि कोटि वर्ष तक तपस्या करके कृष्ण की ही कृपा नहीं प्राप्त करते हैं। कृष्ण कैसे प्राप्त होते हैं? यदि कोई राधिका जी का मैं उनकी दासी हूं ऐसी भावना किसी के अंदर में हो जाए और कृष्ण को पता लग जाए कि ये कृष्ण की दासी होना चाहती है, बस अपने को एक दमतक क्षणार्थ में उसको अपने स्वरूप को उनके यहां प्रकट कर देते हैं, अपने को दे देते हैं। राधिका की चरण धूलि स्पर्श करने मात्र से ही कृष्ण की संपूर्ण करुणा वहां पर उपस्थित हो जाती है। इसलिए मैं नारद जी कहते हैं मैं उस धूलि को मैं प्रणाम करता। कोई कोई तो हम देखते हैं कि राधा जी को कैसे प्रणाम करते हैं, उस दिशा को प्रणाम करते हैं जिस दिशा में श्रीमती राधिका जी हैं। जब से आकदा विपत्नान चलो खेल धन्यात धन्य पौने नितात्मान जोगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनों की तस्या नमस्त वृषभानुभूति। और न जाने कैसे इतना बड़ा भारी गुमान उनके अंदर में प्रवेश कर जाता है। अभी आपको सुनाएंगे ब्रज कोकिला जी तो बड़ा उनको मान हो गया। कृष्ण मनाते मनाते थक गए, आज पैरों में भी अपने सिर को नवा दिया, आज मान नहीं रही। वो कुंड के एक तरफ में है और कृष्ण अंत में हार मान करके दुखित मन से इस पार में चले आए। उस समय में हवा चली, राधा जी जिस तरफ से हैं उस तरफ से हवा चली और राधा जी के श्री अंगों के अंचल को स्पर्श किया, उसको उड़ाया उस हवा ने। धन्याति धन्य पौने न कृतात्मा, एक तो सुंदर शीतल मंद सुगंध आसपास के पुष्पों से आरंभ देवी चमेली जूई कदम इत्यादि को और उसमें राधा जी के अंचल अंग से संस्पृष्ट जो अंचल है राधा जी का सुगंध इतना है कि कृष्ण मतवारे बन जाते हैं, उन्मत्त बन जाते हैं उनके श्री गंधों से ही। इसलिए उस गंध को हवा लेकर के इस पार आते ही कृष्ण को लगी। कृष्ण सोचा जैसे आज राधिका जी ही हमें मिल गए, एकदम अपने जीवन को ही कृतार्थमान। धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमान, वो तो धन्याति धन्य पवन था, उसके स्पर्श से कृष्ण ने अपने को धन्याति धन्य माना। मैं उस दिशा को प्रणाम कर रहा हूं जिधर में श्रीमती राधिका जी हैं और की कृपा। इस तरह से राधिका जी को नमस्कार दंडवत प्रणाम करके और वहां से नारद जी चले। इसलिए नारद जी का 15 दिन बाद कृष्ण का जन्म हुआ भाद्रपद की अष्टमी को और उनका हुआ राधाष्टमी, इसके बाद वाले महीने में उनका जन्म होता है। बस एक महीने की 15 दिन की छोटी बड़ी है, वो है 14 वर्ष के, तब ये हैं 13.5 वर्ष की। कृष्ण यदि 14.5 वर्ष के हैं तो राधा जी बस एक 15 दिन की केवल छोटी बड़ी का। और अभी कुछ लोग कहते हैं कि राधा जी बड़ी हैं और कृष्ण छोटे हैं, कितने तरह के अनुमान लगाते हैं, ऐसी बात नहीं। वो तो नित्य दोनों एक ही हैं, नित्य हैं, काल में आविर्भूत होने के कारण हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो छोटी हैं कि बड़ी हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों दो है ही नहीं है। इस तरह से राधिका जी का भी आविर्भाव हुआ। आप लोग अभी इसके बाद में कीर्तन सुने और फिर विधिवत जैसा हम लोगों का कीर्तन पाठ होता है वैसा हो, इसके बाद में पंथा
ज्ञान तस्मै श्री गुरव
पंचा पौपतुर्वैश्वत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनम् मे गौरदिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो यन्त्र प्रजन्तमनुते तमभसेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहता तरया जिहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भिनेदु तं सर्वभूतहृदयं निमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे माम चरणान्तिके।
कृष्ण के दामोदर लीला का वर्णन हम लोगों ने किया। भगवान सर्व कारण कारण सर्वशक्तिमान है, सर्व ऐश्वर्य संपन्न भी भगवान है, किंतु
लेट लेट हो गए, ये लेट हो गया तुम्हारे लेट
मान है, यह बात ठीक है। उनकी जितनी भी शक्तियां हैं उन सब शक्तियों में भगवान की करुणा शक्ति अथवा कृपा शक्ति सबकी चूड़ामणि है। भगवान ने मन ही मन में सोचा मैया हमको बांध न दे और साथ ही साथ में अखंड अघटन घटन पटियसी शक्ति बांधने नहीं दिया। आज जब यशोदा जी का परिश्रम देखा कृष्ण ने पसीने से लखपत हो गई, क्लांत हो गई, असहाय बन गई, मैं इस नन्हे मुन्ने को मैं बांध नहीं सकती। अंत में अपने देवता के यहां शरणागत हुई शालग्राम शिला को नारायण समझकर, और मेरी लज्जा नहीं रहेगी मैं कैसे मुक्ति खाऊंगी। उसी समय में भगवान को करुणा आ गई, कृपा शीत सबंदना, अर्थात उस समय में उनकी कृपा शक्ति झट उनके हृदय में आने से ऐश्वर्य शक्ति जो थी अघटन घटन पटियसी शक्ति वाली वो अंतर ध्यान हो गई। और जब वो ऐश्वर्य शक्ति जब दूर हो गई अपने आप बंधन में आ गई। आज तक इनको किसी ने नहीं बांधा, न ब्रह्मा ने, न शंकर ने, न सखाओं ने, किसी ने भी आज तक नहीं बांधा। बस एक बार इन्होंने बांधा यशोदा मैया ने, और एक बार राधा जी ने इनको बांधा था। राधा जी ने माने गोपियों ने बांधा था। ये तरह गए यशोदा दामोदर, और गोपियों ने जो बांधा था वो है राधा दामोदर। कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के बाद कृष्ण लजाते हुए और स्मित हास्य से उनके बीच में जब प्रकट हुए मनमत 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 का भी मनमत करने वाले मान मन को मतने वाले गोपियों ने अपने अपने उत्तरियों का एक एक आसन बनाया। सब आसन बनाती तो गड़बड़ हो जाता, एक एक जूथ की बनाई तो भी करोड़ों आसन बन गए, एक एक जूथ की अलग अलग से एक एक, और कृष्ण उस पर बैठे। सब लोगों ने मिलकर के विचार किया, सखियों ने, ये तो बीच बीच में अंतर ध्यान हो जाते हैं, इसलिए इनको बांध रखना उचित। बांधा कैसे जाए? राधा जी से अंचल से उनका पीताम्बर का अंचल बांध दिया, जो अब कमी इनको छोड़ करके नहीं जाएंगे, इसलिए तब से राधा दामोदर हो गए। हम यहां पर देखते हैं सेवा कुंज में जो राधा दामोदर जी हैं, ये राधा दामोदर हैं, बाल दामोदर जसोदा दामोदर वो नहीं है। ये तो सख्य ने उनके कमर में बांध करके राधा जी से सदा के लिए बांध दिया, इसलिए वो राधा दामोदर हैं। इसलिए जसोदा दामोदर की अपेक्षा भी था, जसोदा दामोदर भी बहुत करुणाशील है, बड़े मधुर हैं, किंतु उनसे भी अधिक नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमोनंत लीलाय देवाय। इसलिए हम लोग इसी राधा दामोदर का नमन करते हैं, जो कि राधा जी के प्रेम से, गोपियों के प्रेम से इनके साथ में बंध गए और फिर कभी भी अलग नहीं होने वाले। यहां तक कि कल की कथा हुई थी, अब हम लोग इसके बाद की कथाओं का हम वर्णन करेंगे। अभी शुभानंद ब्रह्मचारी जी इसके बाद की कथाओं को आरंभ करें। श्रीमद्भागवत की बड़ी मधुर कथाएं सुनी। श्रीमद्भागवत के श्रवण करने का एक ही फल है, दूसरा फल हम नहीं जानते। फल ये है, राधा कृष्ण के चरणों में यदि भजन करने की प्रवृत्ति किसी के अंदर में जन्म जाए तो ये भागवत का फल हो गया। और बार बार श्रवण करने पर भी राधा कृष्ण के चरणों में भजन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती तो वो भागवत पढ़ना क्या, उसका जन्म भी वृथा है। निदेहम अत्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लौम सुकल्पम गुरु कर्ण धारण मयानुकूल्येन लभस्वते ऋतं कुमान भवाब्धिं न करेत स आत्मा। वो व्यक्ति आत्मा, अपने को आत्मा को मारने वाला आत्मघाती है, केवल फांसी लगा लेना ही, रेल के आगे गिर करके या विष खा करके या आग में जल करके मरना ही आत्मघात नहीं है, उससे तो एक जन्म नष्ट हुआ। जो आत्मघाती हत्यारा भगवान का भजन नहीं किया, उसने अपना कोटि कोटि जन्म अंत तक सब बेकार कर दिया, सब जन्मों के लिए आत्मघाती है। इस बार में कहते हैं निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, बड़े सौभाग्य से यह मनुष्य शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ, सहज रूप में हो गया, हमारा इसमें कोई कर्तव्य आया, कोई धर्म कर्म नहीं किया, जिसके बल पर ये मिल गया। ये तो भगवान ने करुणा करके दे दिया। क्यों दिया? वो अहेतु कृपालु, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, वो स्नेही जीवों के प्रति इसलिए ये शरीर दे दिया। और उस पर भी बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने गुरु कर्ण धारण ये शरीर में, शरीर तो सुदृढ़ बनाया, अंधे लंगड़े लूढ़े नहीं बनाया, कान से सुनने लायक ये सुनेंगे नहीं ऐसा भी बारा नहीं बनाया, सब प्रकार से सुजोग दिया। तो सुलभम सुदुर्लभम, ऐसा शरीर भी हमको सुलभ हो गया और उसमें गुरु कर्ण धारण गुरु वैष्णवों का भी संग मिल गया, किंतु वो दुर्भागा ने गुरु धारण नहीं किया, वो तो और दुर्भागा, और उससे भी बड़ा दुर्भागा वो है जो गुरु धारण करके भी भजन नहीं करता है, वो और दुर्भागों में से गुरु दुर्भागा आत्मघाती है। और गुरु कर्ण धारण मयानुकूल लेना लभस्वते, और मेरा अनुग्रह जीवों पर सब पर है। अरे इसलिए तो वृंदावन मथुरा में ब्रज ने जन्म दिया, इसलिए वृंदावन में मथुरा मंडल में ब्रजमंडल में किसी प्रकार से शादी का संबंध करा दिया, इसलिए तो कहीं भी हैं उनमें प्रेरणा देकर के राजस्थान, कहां पंजाब, कहां बंगाल, कहां बिहार, कहां ये और कहां अमेरिका और कहां ऑस्ट्रेलिया, प्रवृत्ति देकर के साधुओं को भेज भेज करके उनको यहां पर बुलाया। ये भगवान की बड़ी कृपा है। नौका में केवल पतवार होने से नहीं चलता, उसमें यदि अनुकूल वायु हो और उसमें पाल तान दिया जाए और हवा उसमें भर जाए तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो एकदम मिनों तक मिनटों में पहुंचा दे। तो ऐसी भगवान की, भगवान का अनुग्रह है। कैसा, बिना पैसे ही जहां पर कि हजारों लाख रुपए खर्च हो सकते थे इतना सुंदर परिवेश बनाया। आप सभी लोग बना सकते हैं, सबके लिए संभव है ऐसा परिवेश बनाना, ये संभव नहीं है। ये भगवान की करुणा से कैसे कैसे सुंदर सुजोग पाठक वक्ता कीर्तनिया सभी यहां पर वृंदावन में यहां पर होने लगे, ऐसे ऐसे सुजोग भगवान की, ये अनुकूल वायु है। इतना भी यदि नहीं हुआ पाया भगवान को, भगवान का भजन नहीं किया, तू आत्मघाती है करोड़ों करोड़ों जन्मों के लिए, इस जन्म में चूक गया फिर अब मनुष्य जन्म मिलना असंभव है। तू अंधा है, तू देखता नहीं, तू एक दिन का देखता है भविष्य, करोड़ों करोड़ों जन्मों का यह भविष्य तू नहीं देखता, इसलिए तू आत्मघाती है। यदि इतना सुनने पर भी, जिसको सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, व्यास जी कर रहे हैं, नारद जी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, शंकर जी कर रहे हैं और ऋषि महर्षि लोग कर रहे हैं, अभी तक की गुरु परंपरा करी, आज तू सुन करके भी भगवान का भजन नहीं करता, तो तेरे जैसा और आत्मघाती और कोई व्यक्ति नहीं। तू देख नहीं रहा कि मृत्यु काल तुम्हारे सिर पर खड़ग लिए तैयार है, और तू देखता ना कैसा है। बहुत से बैल और भैंसे होते हैं, उनको मथुरा वाले कसाई लोग खरीद लेते हैं और बॉम्बे के बूचड़ खाने में बेच देते हैं, एक दो नहीं दल के दल ले जाते हैं, मारते पीटते हुए वहां ले गए और ले जाकर के बूचड़ खाने के सामने थोड़ा सा घास, थोड़ी सी घास उनके सामने फेंक दिए और वो परस्पर उस घास के लिए लड़ रहे हैं, और उनमें से एक एक को या दस दस को बीस बीस को पारी से कहां ले जा रहे हैं, या एक साथ में खड़े करके ऊपर से कर घटकीरा दे, हजारों एक साथ में कट गए। वो एक थोड़े से घास के लिए लड़ रहे हैं और एक मिनट में उनकी पारी आने वाली है, इसको नहीं देख रहे। ऐसे हम लोग हैं, माया की तलवार, काल का कठोर ये तलवार हमारे सिर पर आज आ जाए या कब आ जाए कुछ भी पता नहीं, हम ऐसे अंधे और हत्यारे हैं जो जान सुन करके इतना सुजोग पाने पर भी भगवान का भजन नहीं करते। अभी कल मृत्यु हो जाएगी, कोई ठीक नहीं। इसलिए प्यारे भाई, प्यारे सज्जनों, भागवत के शिक्षा अनुसार में आज ही से भजन करना आरंभ कर दो, कल से नहीं, आज ही से। अरे कल करो सो आज कर, और आज कर सो अब, पल में पर लय हो यगी, बहुत करोगे कब करेगा। मूर्ख लोग कहते हैं आज करो सो कल कर,
और कल करोसो परसो क्या खटखट में पड़े हुए हो, समय पड़ा है परसों। वो मूर्ख अंधे अत्यारे लोग कहते हैं, किंतु सज्जन लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए आज ही से, कल से नहीं, अरे परसों शुभ दिन है, अरे आज ही यदि प्रलय हो गई तो, आज ही यदि हम मर गए तो फिर कल क्या होगा। शुभ दिन देखते 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 शुभ दिन देखने को यदि न मिला तो। इसलिए प्यारे भाइयों, आज ही से भागवत का यही फल सुनने का है। आज ही अभी से एक सेकंड की देरी किए बिना आज ही से संकल्प करके भजन में लग जाओ। किंतु हां, इस संकल्प में कुछ बातें हैं, दोष हैं। भगवान का भजन क्यों नहीं? पहले भगवान ने पूतना को मारा। पूतना माने क्या? पूतना जो सबके पुतों को मार रही है, लड़कों को मार रही है, वो पूत है, पूत रहे नहीं। पहला ये, और दूसरा उसका अर्थ है, असल यथार्थ में पूतना माने जो पवित्र नहीं है, सब समय अपवित्र बनी रहे। वो क्या पवित्रता है? भागवत में पहले उन्होंने कहा, द्यूतम पानम स्त्रियम सूना जत्रा धर्मो चतुर। भाइयों, भगवान का भजन करने के लिए द्यूत, लॉटरी फॉटरी, जुआ इत्यादि मत खेलो पहले, नहीं तो भगवान का भजन नहीं होगा। पहली शर्त ये, किसी प्रकार का भी, आजकल राज्य माने हमारा गवर्नमेंट ही जुआ खेला रही है, लॉटरी करना सिखा, ये सबके चक्कर में मत करिए। पानम, पानम माने कोई भी तरह का मदिरा, बीड़ी सिगरेट चुरूट अफीम, चाय को भी ले लीजिए इसी में। चाय नहीं बनी, देरी हो गई, तो भागवत अब पीछे, महाराज जी 15 मिनट और जरा ये चाप करके आए, नहीं तो सिर में दर्द हो जाएगा, टट्टी समय पर नहीं आएगी। लो, अरे कब से तुम्हारे पुरखे लोग पीते थे, अभी तो पुरखों की तो बात छोड़ दी, अभी मैं समझता हूं कि 40 वर्ष 45 वर्ष पहले अंग्रेजों ने चाय पिलाना बिना पैसे का सिखलाया, बिना पैसे, बल्कि उनको पैसा देते थे, चाय देते थे, दूध भी मुफ्त देते थे, सिखलाया भारत को गुलाम बनाने के लिए। इसलिए नहीं तो पेट खराब हो जाएगा और गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए दूतंकान इसलिए माताओं को देख करके आदर करना सीखो, बहन माता लड़की के रूप में देखो। जिस समाज में स्त्रियों को महिलाओं को यथाचित सम्मान नहीं दिया जाता, वो समाज कभी भी ठीक स्थायी नहीं रह सकता, उसमें सुख और शांति नहीं रह सकती। पुरुषों का ही कर्तव्य नहीं, स्त्रियों का भी कुछ कर्तव्य है, उनको भी मां बहन और बेटी की तरह रहना चाहिए। यदि वो नहीं रहती तो उधर से भी गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए दोनों का कर्तव्य है। माताएं भी, लड़कियां भी, बहुएं भी अपना मर्यादा में ही रख करके चले और पुरुष लोग उसका यथा योग्य सम्मान करें। जब रामचंद्र जी और कृष्ण उनका सम्मान करते हैं तो हम लोगों की तो बात क्या। दूतम पान स्त्री सूना, कभी भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। वध तो करने की तो बात ही क्या, तन से मन से वचन से किसी को कोई कष्ट मत दो। देखो तो वो समाज यहीं पर स्वर्ग और बैकुंठ सब यहीं पर उतर आएगा। इसलिए कृष्ण ने देखा, यदि साधक नहीं पवित्र हो पा रहा है तो अंततः आत्मसमर्पण तो करेगा। तो भगवान क्या करते हैं, साधकों के हृदय में रहने वाले जितने पाप हैं उन सबको पुतना की भांति सहज ही में नष्ट करता, खेल ही खेल में। इसलिए सबसे पहले पाप दूर होना चाहिए। दूसरी बात, तृणावर्त, तृणावर्त वह है आंख में धूल जोत रहा, आंधी खूब जोर से आई और सब लोगों के आंखें अंधी हो जाती, भजन करके क्या होगा, भजन करने की कोई जरूरत नहीं। खाओ पियो मौज करो, विवाह शादी करो, बच्चे हो, भजन करने की क्या, कभी भगवान को किसी ने देखा? अरे जितने भगवान के भजन करने वाले हैं हमने देखा है, कहेंगे वो हाथ पसारते हैं, दांत निपोड़ते हैं, हमारे घरों में आते हैं, तो उसे तो हम लाख गुने अच्छे हैं, भजन करने की क्या जरूरत। अरे हम भी मरते हैं, वो भी मरेंगे, बल्कि हमसे सब समय वो दुखी रहते हैं, इसे भजन तजन करने की जरूरत नहीं है। ये ब्राह्मणों की कल्पनाएं हैं, वेद शास्त्र बेकार के हैं, न भगवान है, न ये सब बेकार की बात हो सकती। ऐसे ये तर्क जो हैं, युक्तियां संसारी लोगों को बड़ी भरी लगती है, इसलिए ऐसे तर्क जो हैं ये है त्रिनाम। भगवान देखते हैं कि हमारा भक्त बढ़ नहीं पा रहा है ऐसी युक्तियों से, इसलिए उसके अंदर में रहने वाले समस्त तृण रूपी ऐसे तर्क और युक्तियों को वो खंडन कर देते हैं। यह है त्रिनासुर का वध। और शकट आया, शकटासुर माने क्या है? भजन राज्य में दो चीजें हैं साधकों के सामने, एक है भारवाही और एक है सारग्राही। शकट पर सब चीजें कुछ लाद जाती है, उस पर लाद दिया, क्या लादा? संसार की कामनाएं, वासनाएं, बुरी आदतें, जितने हैं पाप ताप, वही लाद करके चलता है। शास्त्र वेद वेदांत उपनिषद भक्त और भागवत भी पढ़ लिया, किंतु स्वार्थ से ऊपर नहीं उठे, मलिन वासनाओं से हम ऊपर नहीं उठ सके, उन्हीं को लाद करके चलते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे, बड़े सुंदर से सुंदर भाषण देंगे, जैसे एक बड़े भारी दिग्विजयी पंडित थे, भागवत का खूब पाठ करते थे, तो कहीं वो पाठ कर रहे थे और काफी जनता वहां पर आई, उनकी पत्नी भी वहां पर गई, उन्होंने कहा भागवत और समस्त शास्त्रों का यह एक विशेष आज्ञा है, सबको एकादशी का पालन करना चाहिए। 5 वर्ष से लेकर के लड़के लड़कियों से लेकर के 80 वर्ष तक के लोगों को एकादशी उपवास निर्जला करना चाहिए, और निर्जला न हो तो थोड़ा सा कुछ दूध और जल या शिकंजी पी करके रहा जाए, दूसरे दिन पान करके किया। उनकी स्त्री ने को बहुत अच्छा लगा, कहा जी आज से ही, अभी अभी मैंने कुछ खाया नहीं, आज से ही मैं एकादशी कर दूंगी और रसोई उसोई नहीं बनाऊंगी, और आज निर्जला उपवास रहेंगे हम घर में आकर के, और निर्जला रहने के लिए वो रह गई। थोड़ी देर में उसके पिता पति कथा बांच कर और घर में आए, अरे कुछ खिलाया भी नहीं, तो आज तो हमने एकादशी की और आप भी कह रहे थे जल्दी से ले आओ ना तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे, अभी हलवा छुड़ी लिया। तो ऐसे ये सब जो है शकट पर भार वहन करने वाले ये जगत के भाव स्वरूप हैं, जो स्वयं नहीं करते दूसरों को उपदेश देते हैं। राधा कृष्ण के ही एकमात्र भजन होना चाहिए, ये भागवत कहता है, एक ए चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहते हैं। और ऐसे कृष्ण जिनके चिर ऋणी हैं और कहते हैं नपारे हम निरवद्ध संयुजन, मैं राधा जी के ऋण से, गोपियों के ऋण से मैं कभी भी ऋण नहीं हो सकता, यही भजन ही सबसे भागवत का सार। ऐसे पंडितों को हम, मैंने लाखों पंडित, दो एक अच्छे नहीं तो लाखों पंडित, सब त्रिपुण भस्म धर्म 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 और द्वैतवादी लोग जितने हैं वो सब भागवत तो पढ़ेंगे, पैसा बटोरेंगे भागवत के द्वारा, अपने जीवन में आचरण नहीं करते, कृष्ण का भजन नहीं कर करके, त्रिपुण धारण करके, शंकर जी, दुर्गा, काली और आजकल नई नई देवियां, सब कौन एक देवी संतोषी मैया उद्भुत निकली है, और उन अंजनी क्या क्या देवी देवता, शनिश्चर, शुक्र, रवि, नजनी क्या क्या, गिनना असंख्य है। बीज फेंक देने से खेत में गेहूं और ये सब जितनी उपज होती है आज की पृथ्वी ऐसे उससे भी अधिक उपजाऊ है इन देवताओं को उत्पन्न करने में। ये भागवत का तात्पर्य है। एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का भजन करने से तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि अभी दुर्वासा के चरित्र में आप लोगों ने सुना। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो भागवत सुन करके क्या होगा बेकार का। यदि कृष्ण में अनन्य भाव नहीं हुआ, भागवत में अनन्य भावना नहीं हुई, गीता के उपदेशों को नहीं सुना तो ये सब करके क्या होगा। बल्कि जान सुन करके ये करेगा उसके चरणों भगवान के चरणों में ये अपराध होगा। इसलिए कृष्ण में राधा जी में बल्कि कृष्ण से भी अभी श्रीमती जी के चरणों में हम लोगों का ऐकांतिक अनुराग हो। इसलिए ये सकटासुर बने भारत सारग्राही वो है जो शास्त्रों से सार ग्रहण करते हैं वो है भगवत भजन। और भगवत भजन में कृष्ण भजन और उनमें भी राधा जी की दासी होकर के हम भजन करेंगे ये सबका सार है। एक आया बकासुर। बकासुर माने कपटता। प्रत्येक साधकों के अंदर में ये कपटता रह सकती है। ये कपटता क्या है? भगवान का भजन किया एक आना और पंद्रह आना अपनी आकांक्षाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते रह गए, उनसे ही मांग रहे हैं हमको पास सुनना है। लड़के की बीमारी हो गई और पूज्य शंकर जी के यहां गए, चौपट दबाने लगे, ठाकुर जी एक आने के बताशा आपको चढ़ाए लो। भगवान बड़े सस्ते हैं। भगवान कभी कभी बड़े दुखी हो जाते। एक बार बड़े दुखी हो रहे थे भगवान, लक्ष्मी जी ने पूछा भाई क्यों इतना चंचल और छुप हो रहे। उन्होंने कहा कि क्या कहूं, हमको एक भक्त बड़ी जोर से बुला रहा है, जल्दी से आर्त होकर के बुला रहा है, तो आप पधारिए ने जल्दी से चले आए। तो मुश्किल तो ये है ना, हमको बुला रहा है नारायण नारायण नारायण, और मैं जाऊंगा तो वो कहेगा जब प्रभु आप अपनी लक्ष्मी हमको दे दीजिए तो बतलाओ तो तुम्हें दे देना, तो मैं कैसे रहूंगा। ये देखो लक्ष्मी मत चाहो, उनकी सेवा चाहो भाई। ये तो भागवत का तात्पर्य होना चाहिए। तो जो लोग ऐसे हैं ये कपटता के मूर्तियां बकासुर हैं। कृष्ण क्या करते हैं, ऊपर और नोच दोनों का तो बाहर करके और उसको एकदम चीर देते हैं। सबका नहीं चीरेंगे, जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके भगवान से प्रार्थना है प्रभु मैं तो नहीं सकता इसलिए आप हमारी सहायता करें, आप हमारे इन दोषों को दूर करें, तब ये होगा। और एक रह गया धेनुकासुर। धेनुकासुर को कृष्ण नहीं मारते, उसको गुरु मारते हैं। वो गुरु कौन है? विश्व ब्रह्मांड के वो गुरु है बलदेव। धेनुका माने होता है गधा, बड़े गधे हो। बड़े गधे हो माने क्या है? मूर्ख हो। मूर्खता को अज्ञानता को गधा कहा जाता है। धेनु ये कंस का प्रधान चर है, सेवक है। वहां पर ताल के फल हो रहे हैं बड़े से सुंदर और वो सब असुरों को खिलाता है। भगवान के लिए एक भी नहीं देगा, भगवत भक्तों को वहां पर जाने नहीं देता था। तो जो लोग इसके अनुचर हैं धेनु का असुर के माने गधे हैं। गधे कौन है? गधा वह है जो सिर पर ले जा रहा है चीनी बूरा घी मैदा सब ले जा रहा है, बड़े बड़े पकवान ले जा रहा है किंतु अपने नहीं खाएगा। गधे देखिए जगत का भाग धोते हैं, क्या धोते हैं? जितने गंदे कपड़े हो गए मैले कुचैले उनके पीठ पर ला दो और वो घाट पर गया, कपड़े साफ हो गए वहां से फिर उनके पीठ पर ला दो ले आए, अपने ना तो पहनेगा ना कुछ किस्त। इसी तरह से जो लोग जीवन निर्वाह करते हैं गधों के समान, अतः भगवान का भजन का उद्देश्य नहीं रखते ठीक, वो सब गधे के समान। कैसे कहा? धर्म ही नहीं ना पशु, और पशुओं में कैसा जिसका सिर और सिंह नहीं, सिंह भी नहीं और पूंछ भी नहीं, तुलसीदास ने तो बड़ी गजब की गाली दी है जो भजन नहीं करते हैं। तो इस तरह से गधे को दूर करने के लिए, गधापन को दूर करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए बलदेव गुरु भगवान ने कहा ये भक्त हमारे पास नहीं आ रहा, इसके अंदर में गधा झुका हुआ है न धेनुकासु, आप ही इसको दूर कीजिए। कब? गुरु उसके हृदय में रहने वाली जो अज्ञता है, कृष्ण ही एकमात्र जगत के आराध्य हैं, भजन ही उनको प्रसन्न करने के लिए यथार्थ उपाय है, ये सब का करके और गधे को धेनुकासु का वो वध करते हैं। अभी काली था, काली क्या है? ये बिना किसी कारण का क्रोध और हिंसा की प्रतिमूर्ति है। सांप किसी को छेड़ने पर ही काटते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बिना छोड़ बिना किसी छेड़ने से छाने से कहीं गया आदमी और देखा झट काट दिया, ऐसे ये बिना कारण के ही क्रोध करने वाले। काली भी सब असुरों को मारा, कालियों को क्यों नहीं मारा? जितने असुर हैं सबको कृष्ण या बलदेव जी ने मारा, और ये काली कृष्ण के वस्त्रक्षल में काटा, बड़े कोमल हिस्सों को काटा, गले में काटा जिसे अभी तुरंत मर गया, इतना विरोध किया किंतु कृष्ण बस एक कारण से उसे नहीं मार पाए। वो क्या? ये जब तक कृष्ण से युद्धता रहा तब तक तो ये चुपचाप तटस्थ रही, मर जाए अच्छा है, ऐसे पति का संग हम नहीं करना चाहती जो भगवान का विरोधी हो। बड़ी लज्जा और ग्लानी से भर गई और प्रार्थना करी ये जल्दी से जल्दी मरे, किंतु जब कृष्ण के चरणों के आघात से उसके समस्त छत्र टूट गए और लहू उगलने लग गया तो सोचा जी अरे हमारी पत्नियां तो कहती थी जो विष्णु से विरोध मत कर, गरुड़ से विरोध मत कर और कृष्ण से विरोध मत कर, तो मैंने माना नहीं। आज मालूम होता है ये इसके शरीर में इतना भार है जो गरुड़ से मैंने युद्ध किया किंतु तो कुछ भी मेरा नहीं हुआ, किंतु आज मैं इसके भार को सहन नहीं कर पा रहा, आज मैं मरा जा रहा हूं। तो उसने कहा जे हे प्रभु, हे भगवान, कृष्ण को तो नहीं, कृष्ण को तो बालक समझा, हे प्रभु हे भगवान, मैं आपका शरणागत हो रहा हूं, अब से मैं विष्णु वैष्णव का द्रोह नहीं आचरण करूंगा, आप मुझे किसी किस प्रकार से मेरी रक्षा कर। जो ही उन लोगों की पत्नियों ने जब समझा जैसे ऐसी उसकी भावना बदल गई तो कहा ये सब ऐसा पति मरना नहीं चाहिए, अब तो कुछ भगवान की भक्ति आई, बस कृष्ण जो उसे मार रहे थे वो हाथ जोड़ करके उसे ये पढ़ कश्या अनुभाव अश्वन देव में इसकी व्याख्या श्रीमान शुभानंद जी ने किया है। कहते हैं कि कौन काल में काली ने कौन कैसे सुंदर सुंदर कार्य किए हैं, जिसके फल से आज स्वयं जो ब्रह्मा जी चरण जिसको नहीं सेवा कर सकते आज वो चरण कमल इसके सिर पर, और ये चाहता है कि इसको भगा दें, चरण को एक सेकंड रखे नहीं और ये जोर पूर्वक भगवान उसके चरणों पर सिर रखते हैं, ये भगवान की है की दया, उतना चाहती है हमको छुड़ा करके फेंक दें और फिर भी वो नहीं छोड़ते, जोर से पकड़ दिए हैं, ऐसे काली उनके चरणों को फेंकना चाहता है, कृष्ण को मारना चाहता है और जोर जबरदस्ती उन चरणों को जो लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ है ऐसे चरणों से उसके ऊपर में रख रहे हैं। बतलाओ तो काली का कैसा सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिले, वो कह रही हैं नाग पत्नियां जो प्रभु अब तो इसकी रक्षा होनी चाहिए, बस इसी कारण से अपने भक्तों के कारण उन्होंने काली को प्राण दान दे दिया और उसको भक्ति प्रदान करके रमणक ने दे दिया। ये सब भागवत की कथाओं के भीतर में सब रहस्य छिपे हैं, ऐसे ऐसे समस्त लीलाओं में हम इन रहस्यों को ग्रहण करके और अपने जीवन में ही भक्ति करें, भगवान का भजन करें और इन सब अनर्थों को छोड़ करके तो हमारा भागवत श्रवण करना सार्थक होगा और हम भी कृष्ण की भक्ति लाभ करके जीवन से सार्थक। आज यही तक कह करके अपना भक्त एक कीर्तन कर दीजिए, इसके बाद में आप ज्ञान जन सलाह
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपाश्चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय। वैराग्यजुग भक्ति रसं प्रयत्नै अपायं मानं भिक्षुमन्दं कृपां बुधिर्जा पर दुःख दुःखी सनातनस्तं प्रभुमा। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सदन्ति। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करबोधने। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञान राधे तन्मयमाम चरणं। से हम लोगों के कितना
सातवां दिन है।
सातवां दिन आज सातवां दिन हम लोगों का निर्विघ्न रूप से चल रहा है। छह दिन का श्रीमद् भागवत प्रवचन बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। आज हम लोगों का सातवां दिवस है। आज हम लोग राष्ट्रपंच अध्याय के बीच से हम लोग आरंभ कर रहे हैं। आज हम लोग शाम तक रुक्मिणी विवाह तक हम लोग पहुंचेंगे और कल एकादश और द्वादश स्कंद की कथाओं का और उपदेशों का वर्णन होगा, साधनों का वर्णन होगा। कल हम लोगों का प्रसंग आया कि कृष्ण ने शाम को चंद्र उदय के साथ बंशी वादन किया। जगौ कलम वाम दृशा मनोहरा। कल संक्षेप में श्रीमान शुभानंद जी ने इसका तात्पर्य बतलाया और भी अधिकारी लोग हैं उसको समझें, मैं भी संक्षेप में थोड़ा सा स्पष्ट रूप में और इसको बतलाया। जगौ कलौ कलम माने क और ल दोनों मिलकर के क्ल हुआ, अपनी बंसी में बजाया। वाम दृशा माने होता है स्वर्ण वर्ण का अ आ ई ई है, उसमें बाएं से चौथा अक्षर तो क्या हुआ दीर्घ ई, तो क और ल में लग गया दीर्घ और उसमें मनोहरा, मनोहर माने हुआ मन को हरण करने वाला, मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्र हैं, बड़े मनोहर हैं ना? तो ये जो मनोहर मन को हरण करने वाले हैं और मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्र, अब वो क और ल लगा है और उस पर ई आई है, उसके ऊपर में लगा दीजिए तो वो मनहर कब होगा? जब उसके अंदर में एक और बिंदी लग जाए, अन्यथा नहीं। तो उसमें बिंदी भी लग दो तो ये वैदिक मंत्र हुआ। यही मंत्र पहले ओंकार है, कच्ची स्थिति में सब साधारण के लिए, किंतु ये परिपक्व स्थिति में आने पर यही बदल करके रूपांतरित होकर ओम ही क्लिंग बन जाता है। यही ओंकार, ओंकार का तात्पर्य है गायत्री। गायत्री परिपक्व होने पर भजन करते 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 वो काम गायत्री के रूप में परिणत होती है। यही ब्रज की उपासना है, बीज में जो होगा कार्य में वही प्रकटित होगा, कारण में जो है वही कार्य में प्रकटित होगा। जो चीज कारण में ही नहीं है वो कैसे प्रकटित होगी कार्य में? इसलिए इसके अंदर कृष्ण उपासना की सबसे बड़ी भावना इसमें है। यही पीछे से ये विस्तृत होकर और प्रकटित होकर के ये गोपाल मंत्र अथवा कृष्ण मंत्र होता है। इसलिए ये सबको आकर्षण करने वाला होता है। ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि के लिए पहले वो सब तप कर रहे थे, किंतु ये सृष्टि कैसे होगी उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो कृष्ण प्रेरित शुद्धा सरस्वती जी ने इनको यह मंत्र दिया। बहुत दिनों तो करते 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 जब रहे तो कृष्ण ने अपने बंसी के तान से उनको काम गायत्री का मंत्र दिया और तब से उनको उनकी सिद्धि हुई। इसीलिए हमारे संप्रदाय के ये आदि गुरु माने जाते हैं ब्रह्मा जी। कृष्ण से इनका निकटतम संबंध है और इन मंत्रों को जपने वाले हैं, किंतु थोड़ी सी उनमें त्रुटि ये हो गई। ये मंत्र ऐसे हैं सिद्ध मंत्र, आप मंत्र जपते समय जैसी भावना करेंगे वैसा ही फल देंगे। यदि ये मंत्र जपते जपते अर्थ हो जाए, रुपया मिल जाए और मंत्र जप कर रहे हैं तो रुपये मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए। यदि ये मंत्र जपते जपते किसी भी कार्य की भावना आप लोगों ने की तो उस चीज को देख करके अंतर्हित हो जाता है यह मंत्र, अवश्यंभावी ये फल देने वाला देगा ही जरूर जो कोई कोई भावना कर। इसलिए ब्रह्मा जी ने जगत सृष्टि के लिए चेष्टा की थी और उसी के लिए ये मंत्र जप कर रहे थे, किंतु यह राधा कृष्ण का ब्रज का प्रेम देने वाला है, गोपी भाव देने वाला है, इसलिए उनको वो शक्ति और सामर्थ्य दे दी जिससे जगत की सृष्टि करे। पीछे से अपनी आयु के 100 वर्ष में